सबको नमस्ते। मुझे बहुत हर्ष है आज आपके सामने आयुष्मान ह्यूस्टन की जो प्रस्तुति हुई है दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आय महासम्मेलन में, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि संजय सूद जी आपको बार बार सूचित करते थे कि 25 से 28 अक्टूबर को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आय महासम्मेलन होगा, तो यह आय महासम्मेलन हम बहुत सुनते आते हैं और हमारी अपनी जो आय पत्नी सभा अमेरिका है इसका भी वार्षिक होता है अधिवेशन आय महासम्मेलन के नाम से, जो पिछले वर्ष लॉन्ग आइलैंड में हुआ, इस वर्ष अटलांटा में हुआ। तो मुझे मालूम था कि आप सब इस नाम से पूरा जुड़ नहीं पाएंगे कि दिल्ली वाला सम्मेलन बहुत अलग है। तो दिल्ली में जो पूरे विश्व की आर्य समाजों की कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है उसे सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा कहते हैं। वो हर साल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करती है। 2006 से दिल्ली में शुरू हुआ था, बहुत बड़े स्तर पर रोहिणी के एक पब्लिक ग्राउंड में, जिसको स्वर्ण जयंती पार्क बोलते हैं और जापानी पार्क भी बोलते हैं बोलचाल में। फिर जो हमारे देश की ये पुरानी विरासत है, प्रयाग, इलाहाबाद को प्रयाग वापस बोलने लगे हैं शायद, उज्जैन और हरिद्वार, ये तीन ऐसे स्थल हैं जहां हर 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। तो सन 1867 में जो हरिद्वार में कुंभ मेला लगा, दैट वॉज ए गेम चेंजर। जब महर्षि दयानंद ने स्वामी विजयानंद जी से शिक्षा पाई थी, शिक्षा पाना तो बहुत बड़ी घटना नहीं थी उतनी जितनी विजयानंद जी ने दक्षिणा मांग ली, क्योंकि वो घर से निकले थे सच्चे शिव की खोज में और अमरत्व की खोज में कि मृत्यु का भय ना सताए। उन्होंने अपनी बहन और चाचा की मृत्यु देखी तो ये तो क्या मेरी भी ऐसे ही मृत्यु हो जाएगी क्या? और जो मूल शंकर ने शिवलिंग पर चूहे को दौड़ते देखा तो ये तो सच्चा शिव नहीं हो सकता, जो अपने जो प्रसाद जो चढ़ाया है चढ़ावा उसको चूहे से भी रक्षा नहीं कर पाया। तो ये दो प्रश्न लेके वो घर से 22 वर्ष की अवस्था में निकल पड़े और 15 साल इधर उधर घूमते रहे, क्योंकि उनके मापदंड बेंचमार्क बहुत उत्कृष्ट कोटि के थे, तो कोई सच्चा गुरु मिला नहीं। 37 वर्ष के हो गए, 22 के बाद 15 साल कहाँ कहाँ गए, नर्मदा के घोर घने जंगल में भी जहां एक बहुत बड़ा भालू ही छा गया उनके सामने। वो सब तो बहुत वैसी घटनाएं हैं, पर मथुरा में अंत में उन्हें वेजानंद मिले और 33 महीने में उन्होंने अष्टाध्यायी का व्याकरण पढ़ लिया। अब ये सब देखिए जीवन के क्या संयोग होते हैं। दयानंद यदि थोड़ा पहले पहुंच जाते वेजानंद जी के पास, 4-5 साल पहले, तो वही वेजानंद जी कौमुदी वाला व्याकरण ही पढ़ा रहे थे। वो 80 वर्ष के हैं लेकिन उन्होंने भी अपनी पाठशाला में वही व्याकरण पढ़ाया जो चल रहा था। पर उनके जीवन में एक अजीब सी घटना घटी कि दक्षिण का एक ब्राह्मण नदी के किनारे अष्टाध्यायी के सूत्र बोलने लगा। वेजानंद जी अंधे थे लेकिन उनकी ये बहुत स्मृति बहुत तगड़ी थी। उसने जो जो बोला वो बोल रहा एक बार और वेजानंद जी ने याद भी कर लिया। वो जो बोल रहा था कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आज तो हमारे गुरुकुल में हमारे सब बच्चे, मेरे पास भी अष्टाध्यायी है, मैंने भी थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, वो उसने अष्टाध्यायी के सूत्र बोले तो ये तो गजब के थे, प्रतिभा तो थी इनकी, इन्होंने कहा ये असली विद्या है। तो उनको क्या पता चला, जो बहुत बड़ी बात है, आज समाज में बहुत कम लोग ये सब बातें जानते हैं, आश और अनाश का अंतर विजयानंद जी को तब पता चला कुछ वर्ष पहले जब दयानंद उनके यहां आने वाले थे। अब सोचिए दयानंद पहले आ जाते तो वो वैसी दक्षिणा ही नहीं मांगते। देखिए ईश्वर का क्या डिजाइन है, क्या होना था, देश को उस अंधकार से निकालना था, तो खैर दयानंद आए, दयानंद को आर्ष विद्या सिखाई और दक्षिणा में मांग लिया कि तुम इस देश में से जो अज्ञान का अंधकार है, जो अनाश ग्रंथों के कारण है, उसको मिटाओ। तो वो बेचारे जब ये दक्षिणा दे दी, वो भी कंफ्यूज्ड आदमी है, 37 साल 40 के हो गए हैं, तो 2 साल आ गया में है, पता नहीं उनको क्या करना, समझ में नहीं आया। दक्षिणा तो दे दी मैंने, अपना जीवन लगाऊंगा, लेकिन कैसे लगाऊंगा, अभी उनके कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। मेरा भी पैतृक स्थान आ गया इसलिए थोड़ा अच्छा लगता है, और वो आय समाज वल्केश्वर है जहां मैं अभी भी जाता हूं, कमला नगर आजकल कहलाती है। तो वल्केश्वर के में एक पेड़ के नीचे, उनको कोई जानता नहीं था, एक साधारण आदमी की तरह 2 साल उन्होंने बिताए। बीच बीच में सुबह जाते थे 50 किलोमीटर मथुरा, और रात को लौट भी आते थे। 5-6 बार ऐसे गए अपने कुछ जो भी डाउट्स थे, शंका समाधान। तो ये कहानी ऐसे है। फिर जयपुर होते हुए सब रास्ते घूमते हुए 1867, ये है गेम चेंजर सारी दुनिया का, एक दिन सब लोग इसको मान्यता देंगे। उस कुंभ मेले में दयानंद ने अपनी झंडा लगाए, पाखंड खंडिनी पताक। तो इसलिए आज हम लोग यहां है, ये सब है क्योंकि 1867 के कुंभ मेले में। तो मैं कुंभ मेले की बात कर रहा था, 12-12 साल में होता है, प्रयाग में, उज्जैन में और हरिद्वार में। तो 12 साल कभी कभी लंबे लगते हैं, तो 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है। तो आय समाज ने भी वही चीज अपनाई, 2006 में पहला सम्मेलन किया, फिर 6 साल बाद 2012, अब हुआ 2018, अब 2024 में करेंगे जब महर्षि दयानंद के जन्म के 200 वर्ष होंगे। तो ये सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा का दिल्ली में ये, लेकिन बीच के 5 साल वे दुनिया में दूसरे देशों में भी सम्मेलन करते हैं। तो मुनीष जी भी यहाँ है, वो भी कुछ समय के लिए आए उस सम्मेलन में, देव जी भी थे हमारे और हम भी थे, इस प्रकार 3 दंपति तो थे। ऑस्टिन से एक महिला भी थी जो यहाँ आज मेरे कहने पर ये परिवार आया हुआ है। तो इन सब ने वहां देखा, तो आप कल्पना कीजिए वहां 2 लाख लोग, 200,000 पीपल वर थे। अब ऐसा नहीं है कि एक समय में इतने लोग थे, बट दीज मैनी पीपुल एंटर्ड इन टू द ग्राउंड एंड लेफ्ट एट ए गिवन टाइम। लगभग 70,000 लोग थे वहां, इतना बड़ा पंडाल था। तो थोड़ा ये वर्णन करना बड़ा ही मुश्किल है। एक अभी उनकी वीडियो आई है, वो हम संजय सूद जी को भेज देंगे, ये लोग फिर आपको पहुंचा देंगे। तो क्या उसका टाइटल है, सम्मेलन के अद्भुत दृश्य। तो इसमें 4 दिन का ये सम्मेलन था, तो इसमें आयुष्मान ह्यूस्टन की बहुत अच्छी थी, वो बाहर आपका जगमगाया है आपका अभिनंदन पत्र। तो आयुष्मान ह्यूस्टन की लीडरशिप को बहुत अच्छी मान्यता मिली है। तो 4 दिन ये सम्मेलन मुख्य पंडाल में था, जहां लगभग 70,000-80,000 लोग एक समय में बैठ सकते थे। तो भारत के राष्ट्रपति 25 तारीख को सुबह उन्होंने उद्घाटन किया, और ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि वहां उद्घाटन के उनके भाषण के पहले एक गीत गाया गया, वो गीत हमारी आचार्य कविता जी का ही, जो यहां 2-3 बार आप सुन चुके हैं, ऋषि दयानंद ऋषि दया। तो आयुष्मान ह्यूस्टन की छाप एकदम शुरू में ही लग गई थी। और फिर एक सम्मेलन, एक सत्य था जो मुख्य पंडाल की बात बता रहा हूं, जो इंटरनेशनल था, उसमें देव जी सुषमा जी को प्रोमिनेंस दी गई और ये अभिनंदन पत्र दिया गया। हमारी जो यहां फिल्म बनी थी 4 मिनट वाली, वो वहां दिखाई गई। तो आयुष्मान ह्यूस्टन को वैसे भी और जैसा आप जानते हैं मैं थोड़ा गुपचुप वाला आदमी हूं, मैं लगभग 5-6 महीने से तैयारी कर रहा था, क्योंकि मेरा एक सुझाव उन लोगों ने मान लिया दिल्ली वालों ने, ये भी बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा आप लोग किण्वंतो विश्वमायम कहते हो, यहां भी हमारे वेद मंत्र में लिखा है, लेकिन भारत से बाहर अब जैसे आयुष्मान ह्यूस्टन है, अच्छी प्रगति है, लेकिन यहां भारतवंशी लोग ही दिखाई देते। यदि हमारा मैसेज यूनिवर्सल है तो वाई आर वी नॉट एबल टू अट्रैक्ट अदर ह्यूमन बींग्स, इंडिजिनियस पीपल? अमेरिका में है तो अमेरिकन्स को यहां आना चाहिए, कनाडा में है कैनेडियन, जहां जहां भी है। तो मैंने कहा हमारे लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, वो अपने तक ही सीमित रखते हैं और इसका मैकेनिज्म थोड़ा समझना चाहिए। तो मैंने एक वर्कशॉप उनको सजेस्ट की, कन्वेइंग वैदिक प्रिंसिपल्स टू द फॉरेनर्स, विदेशियों तक हम अपना मैसेज कैसे ले जाएं। जैसा आप जानते भी हैं आयुष्मान ह्यूस्टन ने मुझे ज्यादा ड्यूटी नहीं दी है, देवजी ने मुझे बस केवल एक शब्द बोला। मैं जब यहां से लंदन से बात करता था कि आप मुझे क्या काम दोगे, तो उनका बस एक शब्द था, मेन स्ट्रीम में जाना है। तो उन्होंने एक शब्द में अपनी बात कह दी, और आप भी जानते हैं मैं भी थोड़ा बहुत करता हूं इधर उधर जाकर। तो उसी सिलसिले में थोड़ा मैं ऑस्टिन की भी बात कर लूंगा अभी, कि आउट रीच में हम आचार्य सुनंदा जी भी परिवारों में जाते हैं, हवन आदि संस्कार आदि कराते हैं। तो मैं अभी उस सम्मेलन के बारे में बताया था, तो मैंने उनको ये सुझाव दिया कि ऐसी एक वर्कशॉप, क्योंकि 32 देशों से लोग आ रहे हैं, कोई एक रचनात्मक काम भी हो, तो उन्होंने इसको स्वीकार किया। तो सम्मेलन का पूरा वर्णन समझाना बहुत ही कठिन है, वो वीडियो देखने से आपको थोड़ा अंदाज लगेगा, पर एक बहुत बड़ा टेंट है जिसमें लगभग 60-70 हजार लोग बैठ सकते हैं। इसके अलावा 19 पैरेलल हॉल हैं जहां पैरेलल सेशन चल रहा है, कहीं लेखक लोग आए, लेखक परिषद है, लेखक बैठकर अपनी अपनी किताबों के बारे में बात कर रहे हैं, नई किताबों का विमोचन हो रहा है, और वहीं पर पुस्तकों मेला, यू नो आई समाज इज रिच इन लिटरेचर। तो हमारे अपने बहुत से प्रकाशक हैं, तो पूरा 120 स्टॉल, इतने सारे स्टॉल किताबों के लगे हुए हैं, ऑल प्रोमिनेंट बुक पब्लिशर्स हैं। एक शंका समाधान है, एक में हमेशा भजन गाए जा रहे हैं, एक हॉल में हमेशा शंका ये हवन हो रहा है, और एक में प्रदर्शनी है, एग्जीबिशन है। तो ये सब पैरेलल है, मैं नहीं समझता किसी एक व्यक्ति ने सारी चीज देखी भी होगी, मैंने भी नहीं देख पाया। तो खैर हमारा एक हॉल नंबर 19 था जो फॉरेन डेलीगेट्स के लिए था, तो 500 लोग थे जो भारत से बाहर के आए थे। असल में हम बोले तो ये 2000 लोग थे, पर 500 सब 31 कंट्रीज से, और अकेले नेपाल से 1500 लोग आए थे। तो वो नेपाल वालों को जोड़ दें तो 2000 लोग बाहर से थे। तो ये 500 जो विदेशी डेलीगेट्स थे उनके लिए मैंने एक वर्कशॉप डिजाइन की। बहुत मैंने, आप जानते हैं मैं बहुत मेहनत करके, बड़ी मेहनत से मैंने किया, और 30-40 लोगों ने शुरू में रजिस्टर किया, वे सब बड़े लॉयली वहां थे, और उस हॉल में और भी जो विदेश से आए थे दे ऑल अटेंडेड इट, दैट वॉज ऑल्सो। सो हमारी तीन तरह से वहां उपस्थिति दर्ज हुई, एक तो हमारा गीत वहां गाया गया राष्ट्रपति महोदय के सामने, एक इंटरनेशनल सेशन में देवजी महाजन जी के द्वारा हाथों आयुष्मान ह्यूस्टन को एक अच्छा प्रशस्ति पत्र मिला जो बाहर जंग बगाया जाता है, और तीसरा उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि वही स्पेशलिस्ट वर्कशॉप थी, बहुत गंभीर लोगों ने रुचि ली, और जो आए वो पूरा 4 सेशन में अच्छा आया। तो अब मैं उस वर्कशॉप के बारे में थोड़ी बात आपको बताऊं, मेरे दिमाग में क्या था और किस लिए मैंने आज ऑस्टिन के एक परिवार को बुलाया। कल भी मैं इन्हीं के पास था, इन्हीं के यहाँ रात भी बिताई है मैंने, एक तो मेरा इनके यहाँ आना जाना भी है। तो इस परिवार से मैं लगभग 1.5-2 साल पहले जुड़ा हूं। जैसा आयुष्मान ह्यूस्टन की लीडरशिप है, दे हैव एनकरेज मी टू गो एनीवेयर। आपको मालूम होगा डेलास भी मैं गया हूं, सिक्स वीकली सेशंस कर, तो वैसा ही सिक्स वीकली सेशन, उसके पहले ऑस्टिन में हवन कराने कई बार जा चुका हूं, तीन चार बार गया। तो ऐसे ही एक बार हवन कराने गया था, तो वहां मैंने कहा कि क्योंकि मेरा कुछ सोचने का ढंग अच्छा है या बुरा भगवान जाने, कि यदि कोई मेडिटेशन पतंजलि के ध्यान पद्धति में रुचि नहीं लेता और अपने जीवन में उसको नहीं अपना लेता, तो फिर मुझे हमेशा आशंका बनी रहती है कि ये व्यक्ति किण्वंतो विश्वमायम में आगे क्या कर पाएगा, क्योंकि मुझे तो एक देव जी ने दायित्व दे दिया है मेन स्ट्रीम में मैसेज ले जाना है, और बिना मेडिटेशन के मुझे कोई बात समझ में आती नहीं है जिसको मैं उपासना कहता हूं। तो ईश्वर उपासक यदि कोई व्यक्ति नहीं है, अब वो दूसरों को उपासक क्या बनाएगा फिर। और आर्य शब्द का अर्थ ही मैं बोलता हूं, आर्य ईश्वर पुत्र, तो पुत्र तो वही है जो माता पिता की गोद में थोड़ी देर बैठे, उसी को हम उपासना कहते हैं। और ईश्वर की गोद में बैठने के लिए नेसेसरी कंडीशन है डिस्कनेक्शन फ्रॉम माइंड। तो कपिल ने बड़ी अच्छी परिभाषा दे दी, ध्यानम ने विषयम मन, जब मन में कोई विषय नहीं है तब आप ध्यान में। तो खैर अभी इन सब बातों में मैं नहीं जा रहा। तो ऑस्टिन के उस हवन में मैंने कह दिया कि मैं छह सप्ताह में सिक्स आवर्स में आपको पतंजलि मेडिटेशन सिखा सकता हूं। तो ये परिवार है, संदीप जी हैं, शोभा जी हैं, इन लोगों ने कहा हम अपने घर में ऑर्गेनाइज करेंगे। तो वैसा ह्यूस्टन में भी बहुत से परिवारों में ऑर्गेनाइज हुआ है, ऐसी बात नहीं है, ह्यूस्टन इसमें पीछे नहीं है। तो इस परिवार में भी हुआ, तो वहां इनके बच्चे भी बैठने लगे और बच्चों के दोस्त भी आ गए, तो दिस वॉज बिट अनयूजुअल। 15-16 साल के तो बच्चे बैठते थे कभी मेरे साथ। मेरा बेस्ट स्टूडेंट अभी भी इंग्लैंड का है, वो लिवरपूल में आया, क्या नाम है उसका, ईमेल एड्रेस मुझे याद है, जॉनी, ही इज माई यंगेस्ट स्टूडेंट अप टिल कपल ऑफ ईयर्स एगो, ही वॉज 15, अब वो ऑक्सफोर्ड में जा रहा है, ही इज वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट, अभी भी मुझसे मिलने आया बेचारा, मैं लंदन में था तो। बट नाउ आई एम प्राउड टू से माई यंगेस्ट स्टूडेंट इज आर्यन, वो यहां बैठा हुआ है। तो वो इस परिवार में वो भी बैठने लगा, तो इस तरह से इस परिवार ने पतंजलि की ध्यान पद्धति अपना ली है, तो इससे हम और जुड़ते गए। अब मैं वर्कशॉप के बारे में थोड़ा आना चाहता हूं। तो वर्कशॉप को मैंने जैसा आप लोगों से थोड़ा सीखा है, मार्केटिंग के अंदाज में मैंने सोचा थोड़ा। मार्केटिंग में हम कोई व्यक्ति कोई चीज बनाकर एक कंज्यूमर को बेचना चाहता, तो हमने कहा हमारे पास मटेरियल है वैदिक सिद्धांत, हम वैदिक प्रिंसिपल्स को मेन स्ट्रीम में ले जाना चाहते हैं। तो अब जब आप फिर ये भी देखते हैं कि आपका टारगेट कौन है, कौन आपका हु इज पोटेंशियल बायर, और उसके दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट इज हिज प्रायोरिटी। तो इस तरह से मैंने अपनी वर्कशॉप में मल्टीपल स्ट्रीम्स बनाई। तो एक स्ट्रीम बनाई कि यंग पीपल आर मोर डायनामिक ओपन माइंड। तो मैंने चार बच्चों को बोला, एक हमारा अंकित है, एक भारत का चंद्रदेव है, एक यूरोप में प्रयास है, ये नहीं एम्स्टर्डम में मेरे परिवार है, आप जानते हैं यहां आने के पहले मैं मिशनरी था, तो मेरा दुनिया भर में 40-50 परिवारों में आना जाना था। तो वैसा एक परिवार नीदरलैंड में है, अमीश तिवारी, उनका बेटा प्रयास है, और एक उद्गाता है इंग्लैंड में। तो इन चार बच्चों से मैंने कहा कि यू मेक ए प्रेजेंटेशन व्हाट इज इन द माइंड ऑफ मॉडर्न यूथ, सो ही इज आवर पोटेंशियल बायर। तो एक स्ट्रीम मैंने ये सोची। दूसरी स्ट्रीम हमने सोची व्हाट आर वी ट्राइंग टू सेल। तो इसका जिम्मा मैंने खुद ही लिया, क्योंकि ये मैं दिन रात इसी में लगा रहता हूं, तो इसको मैंने एक सोफिस्टिकेटेड नाम दिया, नॉट जस्ट फॉर सेक ऑफ नेम, क्योंकि हम साइंटिफिक कम्युनिटी, आज का एज ऑफ साइंस है, हम क्या बात लेकर जाना चाह रहे हैं। तो इसको मैंने इस टीम का नाम दिया वैदिक यूनिफाइड थ्योरी ऑफ मैटर एंड कॉन्शियसनेस, जो हम आज टॉप साइंटिस्ट से भी डायलॉग में बात कर सकते हैं। तो ये इस टीम का जिम्मा मैंने लिया। फिर मैंने कहा कि अब है मैकेनिक्स ऑफ सेलिंग, है ना, ये चीज हम बेचना चाह रहे हैं, उधर वो पोटेंशियल बायर है, हाउ आर यू सेलिंग इट। तो एक स्टीम मैंने बनाई, कन्वेइंग वैदिक प्रिंसिपल्स टू फॉरेनर्स, है ना, जिसमें आर्ट ऑफ सेल आ गया, क्या क्या मेथड होने चाहिए। तो इसके लिए मैंने चार पांच लोगों से, एक हमारी अपनी मिस कैथी स्टोन है जो यहां कभी कभी आती हैं, उनसे एक प्रेजेंटेशन करवाया, एक अमीश जी से, एक हमारे इंडियानापोलिस के विद्यासागर गर्ग हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है मेन स्ट्रीम में जाने का या उस पर अपनी बात कह सकते हैं। फिर मैंने आया कि जो हम करना चाहते हैं उसका कोई नमूना है नहीं मेरे पास ज्यादा, पर बहुत खोज कर मेरे पास दो नमूने थे, तो ये बहुत अच्छी पोटेंशियल स्ट्रीम नहीं थी, बट वॉट एवर इट इज। तो ये मैंने बताया कि जो मेरा सपना है, एक सही सेल्समैन, सही मैसेज, उसने क्या काम किया। तो इसमें दो छोटे उदाहरण ही मेरे पास थे, एक तो हमारी ये शोभा जी हैं जो आई हैं, इन्होंने थोड़ा सा उसको एसिमिलेट किया है, सो शी विल बी टॉकिंग टू अस, इनका जो प्रेजेंटेशन है संक्षेप में। और दूसरा हमारी कैथी जो है, बिकॉज शी इज टीचिंग मेडिटेशन इन अ वेरी अंडर प्रिविलेज वल्नरेबल ग्रुप, होमलेस टीनेजर्स, तो फोर्ट बेंड काउंटी में एक जगह जाती हैं वो। तो ये दो प्रेजेंटेशन इस स्टीम में थे, तो आई होप यू अंडरस्टैंड देयर वर मल्टीपल स्टीम्स, देयर वर फोर सेशंस अबाउट 2.5-3 hours ईच, और हमने युवकों से बुलवाया कि व्हाट इज इन द माइंड ऑफ यंग पीपल और व्हाट इज वी आर ट्राइंग टू सेल वैदिक यूनिफाइड थ्योरी, हाउ शुड वी सेल इट। इसमें कुछ लोगों ने अपने विचार रखे, कुछ लोगों ने यह मैकेनिज्म कर लिया है, ऐसे दो महिलाओं से हमने बुलवाया। और एक चीज जो मुझे बहुत प्रिय है, एक स्टीम थी पतंजलि योग एंड मेडिटेशन, क्योंकि मेरा ऐसा बड़ा मानना है आज के युग में इसका हम थोड़ा सा भी सच्चा जो योग है, आजकल आप जानते हैं योग के नाम पर बहुत कुछ चल रहा है, पर वो ज्यादातर हठ योग है। जो पतंजलि का योग है, योगश्चित्त वेत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को रोकना, उसके ऊपर एक स्टीम थी, उसकी भी जिम्मेवारी मैंने ही ली और लोगों को समझाया कि ये हम लेकर जनता के पास जाएंगे तो इससे उनको जीवन में लाभ भी मिलेगा फ्रॉम डे वन, और वही लाभ इस परिवार को भी मिला है। तो इस परिवार के श्री संदीप जी यहाँ हैं, शोभा जी यहाँ हैं, इनके दो बच्चे अदिति और आर्यन भी यहाँ हैं। तो अब इस प्रवचन का जो समय है, अगला 15 मिनट लगभग, मैं शोभा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ इधर, और फिर बाद में आज चाइल्ड स्पीकर के रूप में आर्यन भी आपके सामने आएगा। आइए शोभा जी। तो शी विल बी मेकिंग द प्रेजेंटेशन विच शी मेड देयर, बट इन ए वेरी ब्रीफ मैनर, क्योंकि मैं आपको वहां की भी एक पिक्चर देना चाहता था। तो देखिए, 10 मिनट का मेडिटेशन प्रतिदिन करने से इस परिवार को क्या लाभ हुआ है।
थैंक यू फॉर लिसनिंग, धन्यवाद।